अपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी। उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी और साथ ही साथ इन अष्टलक्ष्मी राज्यों की सुंदरता और गीत संगीत को भी हम शब्दों के माध्यम से महसूस करने का प्रयास करेंगे। पूर्वोत्तर धारा। तो आधे घंटे के लिए चलते हैं इस सफर पर, ये देखने की पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक विरासत के साथ जीवन शैली में कितनी सहजता है, कितनी प्रकृति से निकटता है। हम आवाज और शब्दों से इस निकटता को महसूस करेंगे। पूर्वोत्तर में है इसी सहज सरल प्राकृतिक सरलता जो इसे दिव्य तो बनाती ही है, साथ ही इस सरलता में आध्यात्म और अनंत से अपनी पहचान हम तलाश सकते हैं। तो आइए चलें पूर्वोत्तर।
राती दुपो डोले मोला कैसा कैसा मरम तुम गति में काखते बहुवाए मोला मीठा मीठा तेरे तुम गति में राती दुपो डोले मोला कैसा कैसा मरम तुम गति में काखते बहुवाए বুঝিবা তুমি কলে মাইনা বুঝি পাবা মোর গলে মাইনা মরহম আসলতে যৌবন আসলতে।
আজ হম সবসে পহলে বাত করেঙ্গে লোকতন্ত্র কে মহাপর্ব কে শুরুয়াত কি। সারে দেশ কে সাথ হি লোকতন্ত্র কা উৎসব শুরু হুয়া और 19 अप्रैल को पहले चरण में वोट डाले गए। अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट और विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान संपन्न हुआ। लोकसभा सीट के लिए 72% से अधिक मतदान हुआ, जबकि विधानसभा के लिए 76% से अधिक मतदान हुआ है।
यदि देखो ना सुनियो नतुन नतुन लगीसे ना सुनो खाजते ओ मोइना जान लाही कोकल भांगीसे फिर ना सुना पिंडीले ओ भुगड़िया मेर आले ओ साइथा को लगीसे साइथा को लगीसे आदि।
मतदान प्रतिशत की ही बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में पहले चरण के चुनाव जिसमें 19 अप्रैल को वोट डाले गए थे उसका मतदान प्रतिशत इस प्रकार से रहा। नागालैंड में करीब 57%, मेघालय में करीब 70%, मणिपुर में 68% से अधिक मतदान हुआ, असम की 5 लोकसभा सीटों पर करीब 72% वोट डाले गए, त्रिपुरा की एक सीट लोकसभा सीट पर 80% से अधिक मतदान हुआ, मेघालय में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 76.6% मतदान हुआ जो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के 71.43% की तुलना में 5.17% अधिक रहा। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तर्ज पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से राजधानी शिलांग के मुकाबले तुरा सीट पर अधिक वोटिंग का रिकॉर्ड इस बार भी कायम रहा।
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में शिलांग सीट पर 65.48% वोटिंग हुई, वहीं तुरा में 81.38% मतदान हुआ जो शिलांग के मुकाबले 15% अधिक था। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कहा था कि शिलांग में अधिक वोटिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके बावजूद यह विचित्र संयोग कायम रहा। इस बार जहां राजधानी शिलांग की संसदीय सीट पर 73.78% वोट डाले गए वहीं तुरा संसदीय सीट पर 81.37% मतदान हुआ। इस प्रकार राजधानी शिलांग के मुकाबले तुरा में 7.59% अधिक मतदान हुआ और राजधानी शिलांग के मुकाबले तुरा में अधिक वोटिंग का अजीब संयोग इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बदस्तूर कायम रहा। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी शिलांग।
मिजोरम में एकमात्र लोकसभा सीट के लिए हुए मतदान में 56.87% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस लोकसभा सीट के लिए 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। असम में पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद अब चुनाव प्रचार दूसरे चरण के मतदान पर केंद्रित हो गया है। इस चरण में 5 सीटों पर कुल 61 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में भाजपा, कांग्रेस, AIUDF, तृणमूल कांग्रेस और BPF समेत कुछ अन्य दल और निर्दलीय मैदान में हैं। अब अगले चरणों में चुनाव 26 अप्रैल को होगा और ये दूसरे चरण का मतदान होगा। इसमें असम की 5, मणिपुर की 1 सीट और त्रिपुरा की 1 सीट में वोट डाले जाएंगे और कुछ राज्यों में एक ही चरण में मतदान संपन्न हो गया है। लोगों ने पहले चरण में इस महापर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपका सिर्फ ये अधिकार ही नहीं बल्कि ये कर्तव्य भी है। ये लोकतंत्र की सुंदरता है जो गर्व से हमें मतदान कराने का अधिकार देती है। निर्वाचन आयोग और समस्त प्रशासन और पूरी प्रक्रिया इसकी बहुत लंबी है और बहुत से लोगों की इसमें भागीदारी है और ये सब इसलिए कि आप अपनी पसंद बताएं और उसे चुनकर देश की कमान उसे सौंप कर आश्वस्त हो सकें।
नतमस्तक है हम उठाते दो हस्तक है हम भारत भाग्य विधाता है हम भारत के मतदाता है। ओ मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए।
वैसे प्रकृति की अद्भुत छटा को समेटे हुए हैं पूर्वोत्तर के सभी राज्य। दूर दूर तक हिम से आच्छादित ऊंची चोटियों को सहज ही देखा जा सकता है। यदि आप देश के इस पूर्वी भूभाग को देखने का मन बना रहे हैं तो हम आज आपको लिए चलेंगे सुंदर से प्रदेश त्रिपुरा की ओर।
महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनार्तीर्थ কত যুগ ধরি আহিছে প্রকাশি অমন্যয়ার্থ মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র মামিলানার তীর্থ কত যুগ ধরি আহিছে প্রকাশি অমন্যয়ার্থ মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র। কান্ন কুবজরে পরা বারভূঞা আহিছিলে দেই বংশতে শংকৰ দেৱ ইয়াতে জনমিলে।
पहले तो ये जान लें कि त्रिपुरा राज्य जो है वो जल संसाधनों से भरपूर है। राज्य में कम से कम 10 प्रमुख नदियों में 793 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी वार्षिक तौर पर प्रवाहित होता है और ये सभी नदियाँ वर्षा पर आधारित हैं। इन्हें हम वर्षा आश्रित भी कह सकते हैं। अपने छोटे से भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ही त्रिपुरा मानव पर्यटकों के लिए शानदार महलों, शानदार रॉक कट नक्काशी यानी जिसे हम कह सकते हैं कि पत्थर पर उकेरी गई सुंदर मूर्तियों और चट्टानों या पत्थर पर तराशी गई छवियों के रूप में देखते हैं जो बहुत ही आकर्षक लगती हैं। पैलेस ऑफ त्रिपुरा या नीर महल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा महल कहा जाता है। ये महल पूर्व शाही महल राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के महान विजन दृष्टिकोण का परिणाम है। ये राजा और उनके परिवार के ग्रीष्मकालीन महल के रूप में बनाया गया था और आज भी इसकी नयनाभिराम अलंकृत रचना इसके शानदार अतीत को दर्शाती है। वर्षों पहले उज्जैन पैलेस एक शाही महल था। अगरतला शहर इस महल के आसपास ही केंद्रित है। 1901 में बनाए गए इस महल में शानदार टाइलों वाले फर्श, घुमावदार लकड़ी से बनाई गई छत और सुंदर दरवाजे हैं। उज्जैन पैलेस को ये नाम त्रिपुरा के एक नियमित पर्यटक हम कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। टैगोर बाबू त्रिपुरा बहुत बार आए। महल में एक बड़ा सा हॉल है, सिंहासन कक्ष है, दरबार हॉल, पुस्तकालय और साथ ही साथ एक स्वागत कक्ष भी है। उज्जैन पैलेस त्रिपुरा का शाही महल है जो राजधानी अगरतला में ही है। इससे पहले 2011 तक त्रिपुरा विधानसभा के लिए इसे बैठक स्थल के रूप में उपयोग किया जाता था और अब ये संग्रहालय और अगरतला के एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। पैलेस अगरतला में उद्यानों की हरी भरी हरियाली से घिरी हुई है। बीच में एक छोटी सी झील के किनारे पर है। करीब 28 हेक्टेयर उद्यान की भूमि के विस्तार में फैले इस महल में कई मंदिर भी हैं जो देवताओं लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, काली और जगन्नाथ को समर्पित है। उज्जैन पैलेस पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक माना जाता है और करीब 800 एकड़ से अधिक इलाके को ये कवर करता है। ये पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले विभिन्न समुदायों, संप्रदायों और रीति रिवाजों, कथाओं, कला, संस्कृति, परंपरा और शिल्प को बहुत भले प्रकार से आपके सामने रखता है। इस महल को त्रिपुरा सरकार ने शाही परिवार से 1972-73 के दौरान खरीदा था। बताया जाता है कि त्रिपुरा नरेश महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने 1899 से 2001 के वर्षों में इस महल का निर्माण किया था और महल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए, यहां आने वालों के लिए खुला रहता है और सोमवार को ये बंद रहता है। अलावा नीर महल में शाम को साउंड लाइट शो भी दिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं और हर वर्ष महल में एक जलोत्सव आयोजित किया जाता है। नौका दौड़ में हिस्सा लेने के लिए भी यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसलिए आप जब भी अगरतला जाएं तो इस महल की यात्रा करना ना भूलें। वैसे आप भूल सकते भी नहीं है क्योंकि ये बेहद आकर्षक महल है। इस महल की यात्रा के दौरान आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं। आप रुद्र सागर झील के माध्यम से नाव की सवारी करके महल तक पहुंच सकते हैं। बाद हम आपको लिए चलते हैं सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य, जिसे सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। यह यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव और पक्षियों के लिए ये स्थान न केवल एक अभयारण्य है बल्कि ये कहा जा सकता है कि एक शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्र भी है। अभयारण्य के भीतर कई झीलें भी हैं, यहाँ नौका विहार की सुविधा भी है और यहाँ आवासीय पक्षियों, प्रवासी पक्षियों, आर्किड गार्डन, नौका विहार की सुविधा, वन्य जीव वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर और हाथी की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ रबर और कॉफी के बागान जिसकी करीब 150 से अधिक प्रजातियां हैं और ये पूरे वर्ष पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती हैं। पशु प्रेमियों के लिए विशेष रूप से यहाँ चश्माधारी बंदर प्रजाति है बंदरों की जो केवल इसी अभयारण्य में देखने को मिलती है। जब आप जाएं तो अवश्य ही इन्हें देखें। इसके बाद हम बात करेंगे जम्पुई हिल्स की। जम्पुई हिल्स अगरतला से करीब 250 किलोमीटर दूर जम्पुई की शानदार पहाड़ियों पर स्थित है। हालांकि ये शहर से कुछ दूर तो है लेकिन इस यात्रा से आपको बहुत ही शानदार अनुभव होगा क्योंकि ये पहाड़ियाँ पूरे वर्ष भर इसी तरह से हरी भरी और सुंदर दिखती हैं। यानी यहाँ हमेशा सुखद मौसम रहता है और जम्पुई हिल्स को इसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है। जम्पुई पहाड़ी पर संतरों का भी बड़ा उत्पादन होता है जिसके कारण इसे त्रिपुरा के कश्मीर के रूप में भी जाना जाता है। त्रिपुरा में ऑरेंज एंड टूरिज्म फेस्टिवल हर साल नवंबर में मनाया जाता है और फलों के इस उत्सव का आनंद लेने के लिए न केवल देश से बल्कि बड़ी संख्या में पर्यटक और सैलानी विदेशों से आते हैं। इन पहाड़ियों में आर्किड और चाय बागान भी है जो इसे अगरतला का मुख्य पर्यटन स्थल बनाते हैं। अगर हम फलों की बात करें तो संतरा ही नहीं बल्कि त्रिपुरा में अनानास की बेहतरीन किस्में पाई जाती हैं। इसमें से सबसे सुंदर किस्म है क्वीन अनानास कहा जाता है इसे और विशेष रूप से ये त्रिपुरा में ही उगाई जाती है। यहाँ बड़े पैमाने पर अनानास की खेती की जाती है और बाजारों में इसकी काफी मांग है। कुछ वर्ष पहले की बात है जब त्रिपुरा के दौरे पर आए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्वीन पाइनएप्पल को राज्य का फल घोषित किया था और त्रिपुरा को देश में क्वीन अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक होने का गौरव तो प्राप्त है ही। क्वीन अनानास की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो अनानास की अन्य किस्मों से इसे अलग करती हैं और वे हैं इसकी सुखद सुगंध, रसीला स्वाद और वजन का हल्का होना। राज्य के बागवानी विभाग ने बताया कि खरीदारों के बीच क्वीन अनानास की मांग बहुत ज्यादा है। उनके मुताबिक जब विदेशी मेहमान त्रिपुरा आते हैं तो उनका स्वागत क्वीन अनानास खिलाकर किया जाता है। त्रिपुरा के क्वीन अनानास का दिल्ली में भी अच्छा खासा बाजार है। त्रिपुरा राज्य में अनानास का उत्पादन बढ़ाने के लिए बागवानी और कृषि विभाग ने कई किसान कल्याण कार्यक्रम शुरू किए हैं और पिछले कुछ वर्षों में अनानास की बागवानी के लिए उत्पादकों को बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत काफी जानकारियां दी जा रही हैं। इसके अलावा राज्य के अनानास उत्पादक कम लागत पर राज्य के बाहर बड़ी मात्रा में अनानास भेजने में सक्षम हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो 2021-22 में राज्य में 11,505 हेक्टेयर क्षेत्र में अनानास की खेती की गई और इसमें जो किस्में उगाई गई उसमें करीब 35% अनानास की क्वींस किस्म थी और 65% अन्य किस्में। तो त्रिपुरा अगर आप आए तो यहाँ का क्वीन अनानास खाना ना भूले क्योंकि ये बेहतरीन अनानास है। और अब बारी है बौद्ध मंदिर की। महामुनि बौद्ध मंदिर त्रिपुरा में, ये एक तरह से बौद्ध धर्म का प्रमुख मंदिर कहा जा सकता है और पुरातात्विक साक्ष्यों से ये पता चलता है कि बौद्धों ने इस क्षेत्र में बहुत पहले से ही निवास किया है। कई बौद्ध शासकों ने इस राज्य पर, इस जगह पर शासन किया और यहाँ की संस्कृति पर एक तरह से स्थायी प्रभाव छोड़ा। शताब्दी में बौद्ध शासकों की हार के कारण इस समूचे इलाके से बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया था। त्रिपुरा में इसका पुनरुद्धार होना शुरू हुआ 17वीं शताब्दी ईस्वी से और तब से राज्य में स्थायी रूप से रहते हैं। हैंडलूम बुनाई को यहाँ का मुख्य उद्योग कहा जा सकता है। त्रिपुरा में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक अम्बासा भी अपनी समृद्ध संस्कृति और आकर्षक परिदृश्य के लिए जाना जाता है। अम्बासा में त्रिपुरा के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं और उनमें से एक है जगन्नाथ मंदिर। त्रिपुरा राज्य की जम्पुई पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है। ये 930 मीटर यानी कि करीब 3050 फुट ऊंचा पहाड़ है और त्रिपुरा का सबसे ऊंचा बिंदु इसको माना जाता है और प्रशासनिक रूप से ये उत्तरी त्रिपुरा जिले में स्थित है। प्राचीन महल और मंदिरों का यहाँ अपना एक अलग ही समृद्ध इतिहास रहा है। देश के कई प्राचीन मंदिर और महल पर्यटकों और लोगों के लिए आज भी आकर्षण का केंद्र है। देश में पूर्वोत्तर में गुवाहाटी के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन शहर माना जाता है तो वो अगरतला शहर है। यहाँ आज भी कई प्राचीन महल और मंदिर उसी शान से खड़े हैं। पर्यटन की दृष्टि से इस शहर में मनोरंजन के तमाम साधन हैं और एडवेंचर के ढेरों विकल्प हैं। ये शहर समृद्ध संस्कृति के साथ बेहतरीन प्राकृतिक सौंदर्य का सही और सजीव उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि एक समय में इस शहर पर माणिक के राजाओं का पूर्ण अधिकार हुआ करता था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ऐतिहासिक धार्मिक स्मारकों, भवनों और इमारतों के लिए जानी जाती है और अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं ट्रेन से, बस से और हवाई सफर से भी इसका संपर्क जुड़ा हुआ है। गुवाहाटी और कोलकाता से यहाँ के लिए सीधी उड़ानें हैं और सड़क मार्ग से तो किसी भी स्थान से आप यात्रा आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब आपको त्रिपुरा का एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं। अब चले अरुणाचल प्रदेश। उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश को अगर हम उत्सव की भूमि कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 125 से अधिक जनजातियाँ, उप जनजातियाँ, समुदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पहचान है। तो राज्य में कुल मिला के पूरे समय, पूरे साल भर एक उत्सव का सा माहौल रहता है। जब हम कहते हैं कि ये इसकी विशिष्ट पहचान है, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से प्रत्येक जनजाति की अपनी सांस्कृतिक पहचान है, बोली है, जो एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्नता लिए हुए है। इन जनजातियों में आदि यानी आदि जनजाति अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। आदि मूल रूप से एक कृषि प्रधान समाज है जो तीन प्रमुख त्योहार मनाता है, यानी सोलुम, एतोरगिदी और उनियंग आरन। इन त्योहारों में अबांग या पुजारी गीत सबसे अधिक होता है। अबांग पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की उत्पत्ति और विकास के पीछे के सभी पौराणिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के एक स्थानीय जानकार ओमिर तातिन ने हमें बताया कि अबांग तीन प्रकार के होते हैं। पहला बिन्याक, दूसरा लिमिर लिबोंग और तीसरा एकोपता कक्वार उबांग। पूर्वोत्तर राज्यों की अधिकांश जनजातियों के पास अपनी लिपि नहीं है और इसलिए उनके पास लिखित साहित्य नहीं है, लेकिन उनका इतिहास लोक कथाएं और अनुष्ठानों और विशेष रूप से गीतों के रूप में मौखिक साहित्य के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उससे फिर अगली पीढ़ी तक ये प्रसारित होता रहा। और यहाँ आदि जनजाति ने अपने इतिहास, अपने संघर्ष और संस्कृति को अबांग के विभिन्न रूपों से अच्छी तरह से संरक्षित किया है।
एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। ओ एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
और अब पूर्वोत्तर डायरी के लिए निर्धारित समय समाप्त की ओर है। हम ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। हमें अवश्य ही अपने सुझाव लिखकर भेजें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044।
फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती, वो मोगरी जगाती।
अब अगले रविवार इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी।
एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।